कई अद्भुत परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों में से एक महान परिवर्तन सन 1936 हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में हुआ। नेक दिल व सज्जन पुरुष दादा लेखराज, जो हीरों के प्रसिद्ध व्यापारी थे, उन्हें अचानक कई तरह के साक्षात्कार हुए। जहां एक तरफ विश्व के विनाश की भयानक तस्वीरें दिखीं, तो दूसरी तरफ संपूर्ण वस्वर्णिम युग की झलक थी। ये दृश्य उनके जहन में अंकित हो गए। तब असीम शांति और प्रेम का अनुभव करते दादा लेखराज को परिचय मिला परमात्मा शिव का। विश्व परिवर्तन और सुखमय संसार की स्थापना जैसे पवित्र व दिव्य कार्य के लिए निराकार परमात्मा शिव ने दादा लेखराज के साकार तन को चुना और उनको एक नया नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। और इस तरह स्थापना हुई प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की। 300 भाई बहनों की 14 साल की गहन तपस्या के बाद प्रजापिता ब्रह्मा की ये आध्यात्मिक सेना परमात्मा के विश्व परिवर्तन के कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार थी। सन 1950 में ये कारवां प्रकृति की हसीन वादियों में स्थित शहर माउंट आबू पहुंचा। यहां से शुरू हुआ विश्व परिवर्तन अभियान का दूसरा अध्याय, परमात्मा ज्ञान व राजयोग मेडिटेशन को जन जन तक पहुंचाने का। ज्ञान खजाने से परिपूर्ण ब्रह्मा कुमारी बहनों ने शहर शहर जाकर परमात्मा का संदेश पहुंचाना शुरू किया। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और फिर देखते ही देखते पूरे भारत में राजयोग सेवा केंद्र खुलने लगे। 1969 तक भारत में 350 सेवा केंद्रों की स्थापना हो चुकी थी। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने आत्मा की संपूर्णता को प्राप्त कर देह का त्याग कर दिया। उनका जीवन अलौकिक एवं दिव्य कर्मों का एक बेमिसाल उदाहरण बना। संगठन की बागडोर संभाली विश्व दृष्टा ममतामयी दादी प्रकाशमणि ने दादी प्रकाशमणि के कुशल नेतृत्व में अपनी सैद्धांतिक मूल्यों को कायम रखते हुए ये ईश्वरीय संगठन सरहदों और भाषाओं की सीमाओं को पार करता हुआ दुनिया के कोने कोने में फैल गया। आज इस विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू है और 137 देशों में 8,500 से भी अधिक सेवा केंद्र खुल चुके हैं। प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा दी जाती है। सभी एक ऐसी अलौकिक यात्रा पर हैं जहां स्वयं को पहचान, अपने आत्मिक गुण, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति एवं सत्य का अनुभव करते हैं। परमात्मा और उसके कर्तव्य का सही परिचय मिलता है। परमात्मा के साथ एक निजी रिश्ता जोड़ योग के माध्यम से उसकी अलौकिक शक्ति को प्राप्त कर अपने आत्मिक स्वरूप का अनुभव करते हैं। कर्मों की गोह्य गति और समय चक्र को समझ पाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक केंद्र तथा बंदीगृहों में तनाव मुक्ति जीवन, संबंधों में मधुरता, आंतरिक शक्ति का विकास जैसे विषयों पर जीवन कौशल दिए जाते हैं। माउंट आबू में ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड में नियमित तौर पर सम्मेलन तथा सभा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों से सीधे तौर पर जुड़ने के उद्देश्य से राजयोगा एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत 18 विंग्स की स्थापना की गई, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, आर्ट एंड कल्चर विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, एजुकेशन विंग, जूरिस्ट्स विंग, मीडिया विंग, मेडिकल विंग, पॉलिटिकल विंग, रिलीजियस विंग, रूरल विंग, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग, सिक्योरिटी सर्विस विंग, सोशल सर्विस विंग, स्पोर्ट्स विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, वुमेन्स विंग और यूथ विंग। माउंट आबू के आधार स्थल पर तीसरा मुख्य प्रांगण है शांतिवन। शांतिवन का मुख्य आकर्षण इसका विशाल डायमंड हॉल है। इसमें एक साथ 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। इस भवन में 15,000 लोगों के रहने और भोजन की भी व्यवस्था है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा पैराबोलिक सौर यंत्र है, जो भोजन बनाने के लिए भाप ऊर्जा प्रदान करता है। विश्व भर में आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुड़गांव, शांति सरोवर हैदराबाद, ग्लोबल रिट्रीट सेंटर ऑक्सफोर्ड, पीस विलेज न्यूयॉर्क इत्यादि। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस तथा विश्व के अन्य भागों में कई रिट्रीट सेंटर मौजूद हैं। समाज के आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े तबके की सेवा के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक कार्य शुरू किए गए। माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है, जहां दवाइयां और योग के माध्यम से पूर्ण आरोग्यता प्रदान की जाती है। ब्रह्मा कुमारी संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के जन सूचना प्रभाग में एक एनजीओ के रूप में संबद्ध है। यूनिसेफ के आर्थिक व सामाजिक काउंसिल में ये संगठन एक सलाहकार के तौर पर जुड़ा हुआ है। 1987 में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को 7 पीस मैसेंजर अवार्ड प्रदान किए गए। यूनाइटेड नेशन के साथ ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, विजन ऑफ अ बेटर वर्ल्ड और इंटरनेशनल डेकेड फॉर कल्चर ऑफ पीस जैसे महत्वपूर्ण संयोजन किए गए। आज ब्रह्मा कुमारी की वर्तमान मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के कुशल नेतृत्व में 35,000 राजयोग शिक्षक तथा लाखों ब्रह्मा कुमारीज भाई बहने पूरे उमंग और उत्साह से शांति, पवित्रता, परमात्म प्रेम और आनंद का वास्तविक अनुभव प्रत्येक आत्मा तक पहुंचाने में तत्पर हैं। सभी एक नए विश्व अर्थात स्वर्णिम युग की स्थापना करें। स्वर्ग जो आज स्वप्न लगता है कल यथार्थ होगा, क्योंकि जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा।
नेचर यानी क्षितिज जल, पावक गगन, समीर झरने, नदियां, पेड़ पौधे, चांद सितारे तथा ऐसी तमाम चीजें जिसे ईश्वर ने बड़ी खूबसूरती से बनाया है, इन सबको हम प्रकृति कहते हैं और मानव जीवन को संचालित करने में प्रकृति का अहम योगदान है। हम इन चीजों के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ह्यूमन नेचर यानी मानवीय स्वभाव, मानवीय प्रकृति, मनुष्य का आचरण, आचार व्यवहार तथा उसकी आदतों को हम ह्यूमन नेचर की संज्ञा देते हैं। नेचर और ह्यूमन नेचर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, बल्कि मानव शरीर का तो निर्माण ही प्रकृति के 5 तत्वों के मिलने से हुआ है। आज के इस भौतिकवादी युग में नेचर और ह्यूमन नेचर दोनों का ह्रास हो रहा है, दोनों के बीच एक असंतुलन सा पैदा हो गया है जिसका दुष्परिणाम हमें आए दिन देखने को मिलता है और जिसका खामियाजा पूरे मानव समाज को रोज किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज हम देखते हैं कि दुनिया के एक हिस्से में भयंकर सूखा पड़ गया तो दूसरे हिस्से में प्रचंड बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप ने तबाही मचा दी तो कहीं बादल फटने से जान माल की भारी क्षति हो गई, कहीं सुनामी का तांडव तो कहीं कैटरीना का प्रकोप। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हमें इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं झेलनी पड़ रही हैं? क्यों हर तरफ त्राही माम मचा हुआ है? कभी हमने सोचा है इन सब की वजह क्या है? इन सब की एक ही वजह है, प्राकृतिक असंतुलन, और इसका जिम्मेदार है हमारा पूरा मानव समाज। हमारी अति सुविधावादी मनुष्य बिरादरी जो अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए तथा अपने विकास के लिए लगातार प्रकृति विरोधी कार्यों को अंजाम दे रहा है, न सिर्फ नेचर असंतुलित हो गया है बल्कि ह्यूमन नेचर भी आज पूरी तरह असंतुलित और अनियंत्रित हो गया है। आज हमारा पूरा मानव समाज दिशाहीन होकर रह गया है। लोगों के मन से सात्विकता, सदाचार, शांति, प्रेम और बंधुत्व जैसे नैसर्गिक गुण खत्म होते जा रहे हैं और उनकी सोच संकीर्ण होती जा रही है। परिणाम स्वरूप परिवार टूटकर बिखर रहे हैं, भाई भाई के दुश्मन बन बैठे हैं, समाज में दुराचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। लोग जात, धर्म और मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। चारों तरफ असुरक्षा, अशांति, भय और हिंसा का माहौल है, यानी यूं कहें कि हर तरफ एक हाहाकार सा मचा हुआ है। ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन नेचर के लिए इससे बड़ा असंतुलन और इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। आज जरूरत इस बात की है कि ह्यूमन नेचर और नेचर के बीच सामंजस्य स्थापित हो, संतुलन कायम हो, हमारी मनुष्य बिरादरी प्रकृति के महत्व को समझे और प्रकृति विरोधी कार्यों को करना बंद करे, और इसके साथ साथ लोग अपने थॉट मैकेनिज्म को भी बदलें, अपने अंतकरण को शुद्ध और पवित्र करें ताकि समाज में जो वैचारिक और व्यावहारिक प्रदूषण फैल गया है वो पूरी तरह खत्म हो सके। लेकिन सवाल ये है कि लोग अपने थॉट मैकेनिज्म को बदले कैसे, अपने अंतकरण को शुद्ध और पवित्र करें कैसे, वो कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर लोग असीम आत्मिक सुख व शांति की प्राप्ति कर सकते हैं। इन सब का एक ही जवाब है, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता व राजयोग मेडिटेशन वो मार्ग है जिस पर चलने से, जिसे अपनाने से हम अपनी ह्यूमन नेचर को सही तरीके से नियंत्रित व संतुलित कर सकते हैं। तभी संपूर्ण विश्व में हर तरफ शांति, अमन और चैन का माहौल बनेगा, और तभी सही मायने में स्वर्णिम युग यानी गोल्डन ईरा की स्थापना होगी। तो आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम नेचर तथा ह्यूमन नेचर के बीच संतुलन स्थापित करने, लोगों को सात्विकता, सदाचार और पवित्रता का पैगाम देने तथा समाज में शांति, प्रेम, एकता और भाईचारे का माहौल कायम करने की दिशा में एक ठोस पहल है। तो आइए आप और हम मिलकर इस कार्यक्रम को सफल तथा इस कार्यक्रम के उद्देश्य को सार्थक बनाएं। ओम शांति।
चरण में जब विश्व विनाश निकट था, तब मधु कैटब नामक असुरों ने देवी देवताओं को अपना बंदी बना लिया। तब ब्रह्मा जी के द्वारा आदि कन्या प्रकट हुई और मधु तथा कैटब का नाश कर देवी देवताओं को मुक्त कराया। वहीं दूसरी ओर प्रसंग भी व्याप्त है कि महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को पराजित कर दिया। तब त्रिदेव की शक्ति से एक कन्या के रूप में जो आदि शक्ति प्रकट हुई, वे दिव्य शस्त्रों से संपन्न थी। उसने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त कराया। असुरों का संहार कर उन पर विजय प्राप्त करने के यादगार के रूप में ही आज तक देवियों की इतनी पूजा अर्चना की जाती है और उनके नाम पर ही नवरात्रि एवं जागरण का अनुष्ठान भी किया जाता है।
जितनी कही जाए, चाहे जितनी